كده نازل بيه.
जय गोपी जाना वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन जारी
जय
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें जय गुरनिताय जय गौरनिताय गुरनिताय जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
लीला प्रवेश विष्णुपाद त्रिवार्षिकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय ओम नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद त्रिवार्षिकाचार्य अष्टोत्तरशत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय श्री श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय सब वेद भक्त वृंद की चंदन यात्रा महा महोत्सव की श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद की सब वेद भक्त वृंद की जय निताय गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातौ पदान्ति वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुना वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथांबितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता त्रिशाखावनिन्तांच हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रीति भोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का, सभी आजीवन सदस्यों का और सभी धर्म प्रेमियों का, सत्संगियों का इस राधा गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत है। इस जीव जगत पर परम कृपालु श्रील प्रभुपाद महाराज की ये असीम कृपा रही, करुणा रही है कि उन्होंने जीवों के मंगल के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए अथाग प्रयत्न किए और जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान की जिससे कोई भी जीव आकर इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है और अनुकूल, हमारे अनुकूल सुविधा प्रदान की। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल भागवत पाठ होता है, संध्या काल में गीता पाठ होता है, लेकिन प्रतिदिन ग्रस्त व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाते, रविवार को छुट्टी रहती है तो रविवार को भी प्रातः और संध्या काल में प्रवचन होते हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो रविवार को प्रातः नहीं आ सकते। कुछ लोग हैं जो 6 दिन का थकान उतारते हैं रविवार के दिन और 10-11 बजे तक सोए रहते हैं, तो उनके प्रति भी प्रभुपाद महाराज कृपालु रहे। ऐसे लोगों के लिए भी एक दोपहर के समय में ये प्रीति भोज उत्सव रखा, कार्यक्रम रखा कि ऐसे लोग भी जो आलस्य करते हैं वे भी, उनके प्रति भी दया। इस संसार में जो जितना ज्यादा पतित व्यक्ति होता है, संतों की उन पर और ज्यादा कृपा होती है। जैसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों को उन्नत उज्ज्वल रस, ये इतना बड़ा उन्नत, मतलब इसके परे और कोई वस्तु नहीं है, उन्नत सर्वोपरि वस्तु, क्या उज्ज्वल रस जो कलयुग के लोगों को प्रदान किया। तो कलयुग के लोग तो सबसे ज्यादा पतित हैं, उनको इतनी ऊंची वस्तु क्यों प्रदान की। तो जो सबसे ज्यादा पतित हैं तो उन पर भगवान सबसे ज्यादा दयालु हैं, तो ऐसे उनके भक्त भी उन पर ज्यादा दयालु हैं जो ज्यादा आलसी हैं। वे कोई बात नहीं, प्रातःकाल नहीं आ सकते तो कम से कम 12:30, 12 बजे, 1 बजे तक तो आओ। तो कितना अनुकूल व्यवस्था करके रखा है। वास्तव में हम सभी इसके लिए प्रभुपाद महाराज के ऋणी हैं और उनका कृतार्थ मानते हुए आइए हम आज के प्रसंग पर चलते हैं। आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष की भांति चंदन यात्रा महोत्सव आ रहा है। कल से अक्षय तृतीया से यह जितने भी गौड़ीय वैष्णव मंदिर हैं वहां चंदन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। वैसे अक्षय तृतीया कल है हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, और शाक्तकों के अनुसार आज है, ऐसी तिथि। कुछ ऐसी तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे विजयादशमी। तो विजयादशमी के दिन अगर कोई व्यक्ति मुहूर्त करना चाहता है, नया कार्य करना चाहता है, तो ब्राह्मण के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे ही आज एक भक्त बता रहे थे कि गुड़ी पड़वा भी ऐसा, नया कार्य करना चाहता है, कोई मुहूर्त करना चाहता है, तो बिना बताए भी उस दिन कर सकता है। ऐसे अक्षय तृतीया में भी एक महत्व है कि कोई अगर विवाह करना चाहता है तो अक्षय तृतीया के दिन बाहर ब्राह्मण को भी मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता है, अक्षय तृतीया में वो विवाह कर सकता है। जैसे कई समाजों में समूह लग्न होते हैं तो वे प्राय अक्षय तृतीया में होते हैं, क्योंकि समय समूह लग्न में तो बहुत सारे जोड़े आते हैं, तो उनके राशि और उसके अनुसार तो एक ही तिथि आना संभव नहीं होता, तो अक्षय तृतीया के दिन समूह लग्न ज्यादा होते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ तिथियां हैं, तो कल अक्षय तृतीया है, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है इस चंदन यात्रा महोत्सव के लिए। अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक हमारे मंदिर में ये चंदन यात्रा उत्सव होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। तो इसके पीछे क्या लीला है, ये चंदन यात्रा महोत्सव हम क्यों मनाते हैं, ये लीला को प्रतिवर्ष कहा जाता है। वैसे आज हम दूसरा कोई कथा विवाह के संबंध में कथा कहने वाले थे कि भगवान के विवाहों की कथा कही जाए, लेकिन हमको वरिष्ठ भक्त ने निर्देशन दिया कि नहीं, आज आप चंदन यात्रा के विषय में ही बताइए और कुछ नहीं। बहुत अच्छा है, जो वैष्णव का आदेश है वो शिरोधार्य है, तो हमको कहा गया है कि चंदन यात्रा के विषय में आप बताइए। तो आइए हम चंदन यात्रा के विषय में आज चर्चा करते हैं कि इसके पीछे क्या भगवान की लीला है, भगवान के भक्तों की लीला है, और ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात इस कथा को उसी मंदिर में, रैमुणा के खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर जो है, वहां चैतन्य महाप्रभु आए और वहां ये कथा सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, तो नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद, ये तीनों उनके साथ थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय इतने भावावेश में थे ब्रज यात्रा के, कि भावावेश में होते हुए कीर्तन करते हुए वे निकले और नित्यानंद प्रभु और चंद्रशेखर ये सब साथ में थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन जाना चाहता हूं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कोई और इच्छा थी, वे उनको वृंदावन की बजाय और कहीं ले जाना, और कहीं का मतलब शांतिपुर ले जाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो भावावेश में थे, कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे, और जो भी उनको रास्ते में ग्वाल बाल या जंगल में जो गाय चराने वाले ग्वाले मिलते थे तो उनसे कहते थे हरि बोल, तो वे सभी ग्वाल बाल भी उनके साथ साथ हरि बोल कीर्तन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु और आनंदित हो जाते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु को मन में संशय हुआ कि कहीं चैतन्य महाप्रभु ने पूछ लिया कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, और इन ग्वाल बालों ने बता कि ये तो गंगा नदी के तट पर आप विपरीत जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने उन ग्वाल बालों को आगे जाकर बता देते थे कि अगर ये पूछे ना तो बताना कि ये गंगा नहीं यमुना है, ऐसा बता दे। तो ग्वाल वाले अगर पूछते भी तो इस प्रकार बता देते। तो इस प्रकार कीर्तन करते करते बीच में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो नित्यानंद हाँ हम वृंदावन जा रहे हैं, देखिए ना ये यमुना तो कितना दूर है, आ गया ये देखिए यमुना नदी। तो चैतन्य महाप्रभु और भावावेश हो गए, और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को कहा कि तुम जल्दी जाओ और शांतिपुर में जाकर अद्वैत आचार्य से कहो कि महाप्रभु आ रहे हैं, आप तुरंत उनके लिए नाव और कुछ वस्त्र लेकर गंगा के तट पर आ जाओ। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य पहले जाकर, चंद्रशेखर आचार्य ने पहले जाकर अद्वैत आचार्य को बता दिया कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ आ रहे हैं, आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। और ऐसे जब शांतिपुर आए तो आकर नित्यानंद प्रभु ने कहा हाँ यही यमुना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसमें स्नान किया यमुना समझकर, और स्नान करके यमुना जी का स्तुति किया, हे यमुनोत्री आप कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं, आप सब जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली हैं, सबका पाप नष्ट करने वाली हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने यमुना जी का स्तुति किया। और उतने में जब स्नान करके बाहर निकले तो चैतन्य महाप्रभु के पास मात्र एक गोपिन था जो गीला हो चुका था। तो तुरंत अद्वैत आचार्य वहां आ गए कई भक्तों के साथ, वस्त्र लेकर और नाव लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, सर ये आचार्य तुम कर केमते जानीला, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो वृंदावन में, और तुमको कैसे पता चला कि मैं यहां वृंदावन आ रहा हूं, और तुम यहां कैसे आए। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि प्रभु खैर ये तो वृंदावन नहीं शांतिपुर है, लेकिन जहां तुम बसते हो वही वृंदावन है, जहां आप हो वही वृंदावन है। यह पर लिखा गया है आचार्य कहे तुम ही यहां से ही वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन, जहां आप हैं वही वृंदावन है। और ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज यहां आपका आगमन हुआ है। प्रभु कहे नित्यानंद अमारे वांजीला, तब चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अरे प्रभु कहे नित्यानंद अमारे वांजीला, वांजीला मतलब हमको धोखा दिया, हमको मिसगाइड किया। अरे भगवान को कोई मिसगाइड कर सकता है क्या, लेकिन भगवान भक्त के अधीन होते हैं तो फिर है। तो प्रभु कहे नित्यानंद अमारे वांजीला, गंगा के आनीला मोरे यमुना कहिला, गंगा के किनारे लाया और मुझको यमुना बताया, कहा यही यमुना है और लाया गंगा के किनारे। ये अद्वैत आचार्य से कह रहे थे। अद्वैत आचार्य ने कहा कि प्रभु को आप चिंता मत करो, जहां आपने स्नान किया है वो यमुना ही है। कैसे, तो प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है, तो पश्चिम दिशा से यमुना आती है और पूर्व तट पर गंगा आती है, ऐसे दोनों मिलते हैं। तो हे प्रभु आपने जो स्नान किया है वो पश्चिम तट पर किया है, तो पश्चिम तट पर ही यमुना बहती है, वहां पर ये पश्चिम तट है यमुना का, इसलिए आपने यमुना में ही स्नान किया है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने कहा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को वस्त्र प्रदान किया और उनको स्वागत करके अपने घर ले गए। तो वहां भी नित्यानंद प्रभु ने कहा चंद्रशेखर आचार्य से कि आप जाइए और सची माता को भी बुला कर लाइए कि महाप्रभु यहाँ आए। तो वे गए और सची माता को भी नदिया से बुला कर लाए शांतिपुर में। और इस प्रकार वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अद्वैत आचार्य के घर में उनकी पत्नी ने माता सीता ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए चैतन्य महाप्रभु के लिए इस उत्सव में। और उस व्यंजनों का सूची आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कितने प्रकार के व्यंजन, इतने प्रकार के व्यंजन बनाए थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने उन व्यंजनों को देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कृष्ण को इतने प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाता है, मैं तो उसका जन्मों जन्म तक दास बन जाता हूं, मैं तो उनके चरण को मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। इतने प्रकार के व्यंजन बनाकर कृष्ण को भोग लगाते। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम का वास्तविक अर्थ वास्तविक लाभ क्या है। जो पुरुष होता है पति होता है वो बाहर परिश्रम करता है और धन अर्जित करता है, और पत्नी को चाहिए कि वो उस धन से नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और कृष्ण को भोग लगाए। यह है गृहस्थ आश्रम की सफलता। ये पति पत्नी का काम होना चाहिए। पति बाहर कमाए, धन लाए और पत्नी उस धन से नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर कृष्ण को भोग लगाए। ये गृहस्थ आश्रम की सफलता है। इसी को कृष्ण भावना भावित, और इसीलिए गृहस्थ को आश्रम कहते हैं। लेकिन अगर कोई घर गृहस्थी में रहता है लेकिन कृष्ण के लिए इस प्रकार कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रयास नहीं करता, उद्यम नहीं करता, तो वास्तव में वो गृहस्थ आश्रम नहीं लेकिन वो गृह मेधी है। ये प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन वहां लिखा गया है। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि सोप तो दोने थे जिसमें मात्र तरकारियां थी, सब्जियां थी, सौ दोनों में इतनी सारी तरकारियां थी और बाकी मिठाइयां और सब प्रकार के व्यंजन, नमकीन पकोड़े सब प्रकार का। और वो भगवान को भोग लगाया और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में बहुत मनोरंजन हुआ। वो एक दूसरे मिलते थे तो बहुत उनके बीच में प्रेमालाप होता था, बहुत उनके बीच में आड़ी टेढ़ी बातें होती थी प्रेमवश। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया, बहुत संतुष्ट हुए। उसके बाद बहुत बड़ा कीर्तन हुआ और कई दिनों तक चैतन्य महाप्रभु वहां रुके रहे। सती माता ने आकर, जब सती माता का दर्शन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत किया सती माता को और सती माता ने कहा कि हे नित्य निमाई, तुमने भी अपने भाई के जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है। तुम्हारा बड़ा भाई तो मुझे त्याग कर चला गया, मैं तो उसके योग में दुखी थी लेकिन तुमको देखकर मुझे उसका कमी नहीं खलता था, लेकिन आज तुम भी इस प्रकार संन्यास लेकर मुझसे दूर जा रहे हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं माता, ये शरीर तुम्हारा है, ये मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं 100 जन्म लेकर भी तुम्हारे इस ऋण को नहीं चुका सकता। मैं वहीं रहूंगा जहां तुम्हारा आज्ञा होगा। तब सती माता ने आज्ञा दिया कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, वृंदावन नहीं जाना, जिससे मुझको तुम्हारे समाचार मिलते रहेंगे और तुमको अगर मिलना है तो भी हम आ सकते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ की आज्ञा पर, सती माता की आज्ञा पर जगन्नाथपुरी में जाने का निश्चय किया। और बाद में कई भक्तों के साथ चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद, नित्यानंद प्रभु और दामोदर पंडित, इनको साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु फिर से कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। जब जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए तो बीच में रेमुणा सिटी आया, रेमुणा शहर जो है वो आता है। तो उस रेमुणा में वे गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ उस मंदिर में गए और बहुत कीर्तन हुआ। मंदिर में जाकर जब चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया तो गोपीनाथ जी का पुष्प मुकुट गिरकर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गिर गया। तो इससे और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और बहुत भावावेश में आकर कीर्तन किया। और कीर्तन करने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बिठाकर यह कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये कथा, हे नित्यानंद, मैंने ये कथा हमारे गुरु ईश्वरपुरी से सुना था, जो हमारे परम गुरु मार्विंद्रपुरी का लीला है, लीला कथा है। तो इस प्रकार सुनाते हुए चैतन्य महाप्रभु वहाँ माधवेंद्रपुरी के भक्ति का, उनका कैसा भक्ति था, माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त थे, इसका व्याख्या करते हुए चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुनाते हैं कि माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते एक बार वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर वे रहने लगे। वे मात्र एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि ठहरते थे और कहीं भी कुछ मांगने के लिए नहीं जाते थे। अयाचक व्रति रखते थे या अजगर व्रति रखते थे। अयाचक, याचक का अर्थ होता है मांगना और अयाचक का अर्थ होता है नहीं मांगना। तो वे कभी भिक्षाटन के लिए भी नहीं जाते थे, किसी से कुछ भी वस्तु नहीं मांगते थे, ऐसा उनका व्रति था। और वे हमेशा भगवान के कीर्तन में और जप में स्मरण में मस्त रहते थे। तो इस प्रकार रहते रहते एक बार की घटना की वे 3 दिन तक ऐसे ही भूखे रहकर भगवान के भक्ति स्मरण में मस्त थे। लेकिन वृंदावन में कोई भूखा कैसे रह सकता है? जब 3 दिन हो गए और उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो एक ग्वाल बाल, बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल, एक मटकी लेकर उसमें खीर था और वो लेकर आया और माधवेंद्रपुरी से कहा कि बाबा ये खीर मेरी मैया ने भेजा है, आप इसको खा लो, आप 3 दिन से भूखे हैं, ब्रज में कैसे कोई भूखा रह सकता है। माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अरे बालक, तुम्हें कैसे पता कि मैं 3 दिन से भूखा हूं? तो कहा कि यहाँ गोविंद कुंड पर कई माताएं पानी भरने के लिए आती जाती हैं, तो उन्होंने देखा कि आप 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, आप कुछ मांगते तो नहीं है, तो इस प्रकार इसमें जो खीर है खा लीजिए, अभी मेरे को गाय डोने के लिए जाना है, वापस आकर मैं ये पात्र ले लूंगा, आप इसमें से जो खीर है खा लीजिए। इस प्रकार देकर वह ग्वाल बाल चला गया। माधवेंद्रपुरी इसके देखकर उसको देखते ही रह गए, और जब उस खीर को खाया तो और भावावेश हो गए, और भावावेश होकर जब वे जब कर रहे थे, जब करते 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 उनको ढपकी आ गया, नींद आ गया, और जैसे नींद आया तो उस नींद में वह ग्वाल बाल फिर से आया और आकर कहा कि हे पुरी, मैं गोपाल ही हूं और कई दिनों से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। क्या राह देख रहे थे? बहु दिन तुम्हारा पति करी निरीक्षण करता था। हाँ, क्या निरीक्षण? कबे आसी माधव करिए सेवन, ये माधव मतलब आप कब आयोगे और कब मैं आपको ये सेवा प्रदान करूंगा, क्या सेवा है? वो अभी बताएंगे। लेकिन इस श्लोक में ये जानने को मिलता है कि कभी कभी हम लोग जाते हैं कई भक्तों के पास, कई लोगों के पास, और उनके पास बहुत बहुत कुछ धन बन होता है, लेकिन वे मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नहीं देते हैं, तो कभी कभी भक्त रुष्ट हो जाते हैं, अरे कैसा आदमी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी व्यक्ति की सेवा भगवान भी नहीं लेना चाहते, और किसी किसी व्यक्ति की भगवान सेवा लेना चाहते हैं तो वो सामने से आकर देता है, लीजिए लीजिए प्रभु जी, मैं लाइफ मेंबर बनना चाहता हूँ, लीजिए आपका मंदिर बन रहा है तो लीजिए, इसमें क्या चाहिए, मैं इतना देना चाहता हूँ, मैं इतना ईट देना चाहता हूँ। इस प्रकार सामने से कोई कोई व्यक्ति आता है, और कोई कोई व्यक्ति के पास जाकर कई भक्त गिड़गिड़ाते हैं, बहुत चक्कर लगाते हैं, फिर भी वो सेवा नहीं देता। तो कभी कभी भगवान भी किसी की सेवा को स्वीकार करते हैं और किसी की सेवा को लेना चाहते हैं। तो यही पर बहु दिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, मैं बहुत दिन से तुम्हारा पथ निरीक्षण कर रहा था कि कब माधव आएगा, कहा कभी आसी माधव करीबे सेवन, तुम आओ, कब आओगे और कब मेरी ये सेवा करोगे। क्या सेवा था? तो उन्होंने सपना में बताया कि मैं कई दिनों से इस गोवर्धन की इस तलेटी में जो बहुत घनी झाड़ी है उसके पीछे मेरा विग्रह रखा हुआ है, इसकी स्थापना वज्रनाभ ने की थी, लेकिन मुगलों के आक्रमण से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पुजारियों ने यहाँ पर मुझको छिपा दिया और उसके बाद वे चले गए, तो तब से मैं यहीं निवास कर रहा हूँ। तो हे माधव, मेरी इच्छा है कि तुम इस ब्रजवासियों की सहायता लेकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इस प्रकार सपना में आदेश देकर वे गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। तो माधवेंद्रपुरी उठे और उठकर ब्रजवासियों के पास जाकर ये सारी घटना बताई। ब्रजवासी भी तैयार हो गए, कई ब्रजवासियों को, कई युवा ग्वालों को लेकर माधवेंद्रपुरी जो बताया गया था वहाँ उस स्थान पर गए। वहाँ बहुत घनी झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों को काटा गया और काटने के बाद अंततः उस विग्रह का दर्शन हुआ। तब सभी ने मिलकर उस विग्रह को वहाँ से बाहर निकाला, बाहर निकालकर उसको गोवर्धन पर लाया गया और बाहर लाकर उसको एक सुंदर शिला पर रखा गया। आसपास में कुछ शिलाएं खड़ी की गई, उनको कई मटकों से स्नान कराया गया, और स्नान करने के बाद यह चर्चा चारों ओर फैल गया कि गोपाल जी जो वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए थे वे गोपाल जी प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार आसपास के गांवों में, व्रज में, मथुरा तक सब गांवों में यह चर्चा फैल गया और इस प्रकार उन गोपाल जी का स्थापना हो रहा है, उनका अभिषेक हो रहा है। तो कई लोग और ब्रजवासी सब अपनी जो सामर्थ्य था उस प्रकार की सामग्रियां ले लेकर वहां गोपाल जी का दर्शन के लिए आने लगे, कई प्रकार के भोग लेकर आने लगे। और वहां लिखते हैं कि कई लोग जो धनी थे, कई प्रकार का धन, कोई सोना, कोई चांदी, कोई आभूषण, कोई कोई नकद धन लेकर आते थे और उस मंदिर में सेवा के लिए और गोपाल जी का मंदिर बनाने के लिए इस प्रकार वहां के सभी निवासियों ने अपनी अपनी भेंटें अर्पण की और बहुत बड़ा उत्सव कई दिनों तक चला। कई प्रकार के व्यंजन बनाकर, अन्नकूट बनाकर उनको भोग लगाया जाता था, कई प्रकार के उनके लिए आभूषण और बहुत प्रचुर मात्रा में धन अर्पित किया गया। वहां प्रभुपाद जी ने लोगों को ये शिक्षा दी कि व्यक्तियों को चाहिए, ग्रस्तों को चाहिए कि वे इस प्रकार मंदिर निर्माण के लिए, भगवान के मंदिर का निर्माण कराने के लिए अपने पास जो यथा योग्य अपना सामर्थ्य है उस प्रकार वे अपनी सेवा प्रदान करें। ये हमारी संस्कृति है और ये गृहस्थी का धर्म है। ये अनादिकाल से ये संस्कृति हमारा चला आ रहा है। हमारा ग्रस्तों का कर्तव्य है कि हम अपने धन को भगवान के मंदिर निर्माण के लिए लगाएं और हमारे पास जो भी अन्न है और जो भी सुविधा है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करें। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हमारा वह धन भगवान की सेवा में इस प्रकार अर्पित किया जाता है, उनके मंदिर निर्माण के लिए, अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए जब वो धन को लगाया जाता है तो हमारे उस धन का शुद्धि होता है, वो धन सार्थक होता है। जिस प्रकार धन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा धन शुद्ध होता है और जो हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमारे धन को और हमारी इंद्रियों को वास्तव में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषि के न ऋषि के से न सेवे, ऋषि के इंद्रियों को ऋषि कहा गया और ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियों को हमारे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हमारे धन भी शुद्धि होता है और हमारी इंद्रियों का भी शुद्धि होता है। तो इस प्रकार वहां के आसपास के सभी लोगों ने अपने धन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। बहुत लंबे समय तक यह उत्सव चलता रहा, लगभग 2 वर्ष तक यह उत्सव चला। और उसके बाद 2 बंगाली सन्यासी वहां पर आए तो उन 2 बंगाली सन्यासियों को माधवेंद्रपुरी ने दीक्षित किया। सन्यासी थे फिर भी वैष्णव दीक्षा दिया और दीक्षित करके उनको गोपाल जी की सेवा में नियुक्त किया और गोपाल जी की सेवा में नियुक्त किया और उसके बाद उस गोपाल जी को अभिषेक किए, उनका स्थापना किए। जब 2 वर्ष बीत गए उसके बाद की घटना है कि एक दिन पुरी को फिर से सपना में आए हैं। सपना देखी पुरी गोसाई जर हेला प्रेमवश, सपना में आए और सपने में आकर उन गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को बताया कि हे माधव, बहुत दिन से मेरा सेवा हो रहा है लेकिन मैं इतने दिन तक इन झाड़ियों के बीच में रहा हूं कि मेरे शरीर में अभी तक ठंडक नहीं हो रहा है, मुझे ताप लग रहा है। इसलिए हे गोपाल तुम जाओ, प्रभुरा आज्ञा पाई रे गेला। भगवान ने आज्ञा दिया, आदेश दिया कि तुम मलय चंदन लाकर मेरे शरीर पर लेप करो जिससे मुझे उस ताप से मैं मुक्त होकर ठंडक का आस्वादन कर सकूं। इस प्रकार आदेश दिया। तो आदेश देते ही प्रभुरा आज्ञा पाई बेर गेला पूर्व देश, जैसे ही भगवान ने आदेश दिया माधवेंद्रपुरी तैयार हो गई। बहुत अद्भुत बात है। हालांकि माधवेंद्रपुरी जब चंदन लाने के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो वृंदावन से ये मलय चंदन जो है पुरी में मिलता था, उसको मलय देश कहते हैं, या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मलेशिया में भी होता है, मलेशिया में भी होता था। और नीलाचल की पहाड़ियों में भी ये मलय चंदन होता था, तो वहां से वो चंदन लाना था गठरी बांध के एक मन चंदन। तो माधवेंद्रपुरी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं था। एक ये ध्यान देने जैसी बात है, और वहां कोई जाने के लिए सुविधा भी नहीं था, पैदल चलकर जाना है। अब पैदल चलकर उड़ीसा तक, वृंदावन से उड़ीसा जाना है, हम तो वृंदावन जाते हैं और एक गोवर्धन परिक्रमा के तो शाम को सब होश ठिकाने हो जाते हैं, कुछ लोग तो कहते साइकिल करो कुछ लोग। लेकिन माधवेंद्रपुरी को पैदल चलकर कितना 1500 किलोमीटर लगभग पड़ता है, बहुत दूर है, 1500 से भी ज्यादा किलोमीटर पड़ता है। तो इतना 1500-2000 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलकर जाना, और चंदन के लिए उनके पास कोई धन भी नहीं है, और साथ साथ में चंदन लेकर आने के लिए बहुत बहुत मुश्किलें और असुविधाएं हैं। उस समय उस क्षेत्र में मुगलों का साम्राज्य था, और इस प्रकार चंदन और कपूर भी साथ में लाना था, तो ये दोनों वस्तुएं लाने के लिए बहुत बाधाएं थी। जगह जगह पर टोल टैक्स वसूले जाते थे, और कई कई मुगल जो राजा थे या उनके सेवक थे तो हाँ भगवान के लिए सेवा में झड़प लेते, रख दो नहीं ले जा सकते, और कर मांगा जाता था, टोल टैक्स मांगे जाते थे। तो ये सब दुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद इन असुविधाओं के या इन बाधाओं पर बिल्कुल विचार किए बिना माधवेंद्रपुरी तैयार हो गए। प्रभुपाद वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान की सेवा के लिए इस जगत की असुविधाएं या उसमें आने वाली बाधाओं का कभी परवाह नहीं करते। बहुत सुंदर है। अब देखिए हम सुनते हैं प्रतिवर्ष, आज प्रातः काल भी सुन रहे थे, भगवान ने ये भागवत पढ़ा है मेरे सामने, यही प्रश्न चित्र है। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के समक्ष भगवत स्वरूप में, और वसुदेव और देवकी ने उनका स्तुति किया और जान गए कि ये भगवान है, और उन्होंने भी बताया कि मैं इसीलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ कि साधारण शिशु के रूप में प्रकट होता तो शायद आपको पता नहीं चलता कि भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और उनके पूर्व जन्मों की कथा बताई। स्तुति करने के बाद, भगवान ने ये सब कथा बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी लिखे ततच्च सौरी भगवत प्रचोदिता है, वो जो श्लोक है ततच्च सौरी भगवत प्रचोदिता, ततच्च उसके बाद ततच्च सौरी भगवत प्रचोदित, भगवान के द्वारा प्रेरित किए जाने पर। क्या प्रेरित किया? जब स्तुति करने के बाद अंत में देवकी जी ने स्तुति किया कि मैं कंस से भयवश आतुर हो रही हूं, मुझको भय हो रहा है, आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए और छोटा सा शिशु बन जाइए, वो कंस आएगा और आपको क्षति पहुंचाएगा, मैं आपको छिपा लूंगी, तो मुझे भय हो रहा है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, हे माता देवकी, अगर आपको भय है, आप भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि मुझको यहां से निकालकर गोकुल पहुंचा दीजिए, और गोकुल से यशोदा के यहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको आप यहां लेकर आइए। अब ये प्रसंग हम सुनते हैं, लेकिन इस प्रसंग पर हम विचार करें, क्या भगवान को वहां से कंस के कारागृह से गोकुल ले जाना ये क्या कोई आसान काम है? कभी हमने विचार किया? कंस का पहरा बहुत ही कठोर था, और भागवत में भी लिखा गया है कि बड़े बड़े गेट थे, बड़े बड़े दरवाजे थे जो कई सांकड़ों से बंधे हुए थे, और उन बड़े बड़े दरवाजों पर बहुत सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, और ऐसे ऐसे गेट थे, एक भक्त तो एक बार व्याख्या कर रहे थे कंप्यूटराइज्ड गेट थे, कि अगर कोई बिना आज्ञा के कोई ऐसे छुपकर तोड़कर उस द्वार से भागना चाहे तो द्वार के खुलते ही ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उस पर गिरने लगते, चटनी हो जाए उस व्यक्ति का। और कई कई गेट पर कोई भयानक हिंसक पशु जैसे शेर इत्यादि को रखा गया था कि कोई बिना आज्ञा के भाग नहीं सकता कोई, और बड़े कठोर कठोर पहरे थे और कई ऐसे दरवाजे थे, और उस जेल में जहां बंद थे उसके बाहर भी बड़े कंस के पहरेदार, सतर्क सावधान पहरेदार कि एक कोई मच्छर भी उनसे अंदर बाहर नहीं हो सकता। इतने कठोर पहरे, इतना कड़ा पहरा, और कंस के साथ छल करके जाना, कंस जैसे क्रूर व्यक्ति को धोखा देकर जाना, ये कितना बड़ा दुविधा है और कितना बड़ा विघ्न है। अगर कंस को पता चले तो वो वसुदेव जी को मार सकता था, जब देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी को, तो ये कितना बड़ा असुविधा था। लेकिन वहां सुखदेव गोस्वामी ने ततच्च सौरी भगवत प्रचोदिता, ततच्च जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, भगवत प्रचोदित, भगवान के द्वारा प्रेरित किए गए कि मुझको गोकुल पहुंचा दो, वसुदेव जी ने कोई विचार नहीं किया कि इसमें कितनी बाधाएं आ सकती हैं, इसमें कितने विघ्न आ सकते हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वे भगवान की सेवा के लिए आने वाले दुविधा या विघ्न पर कभी विचार, उसकी परवाह नहीं करते। आप इसी बात को लीजिए प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को जब विदेश जाना था तो कितनी दुविधाएं थी, उनके पास भी कोई धन का सुविधा 40 रुपए मात्र, और जिस जहां यात्रा करना है उसका भी कोई सुविधा नहीं। बड़े प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था सुमती मुरारजी से, बहुत प्रभुपाद जी ने आग्रह किया था, हालांकि सुमती मुरारजी भी कह रही थी कि आपकी आयु 70 साल की आयु है और जो आप नियम बता रहे हैं विदेशों में इसको कोई सुनने वाला नहीं है, और आप इस आयु में यही वृंदावन में बैठकर भजन कीजिए, वहां आप कैसे। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। गौर निताई खुल गए, जय श्री श्री गौर निताई की। तो इस प्रकार की कई बाधाएं और कई विघ्न थे उसमें भी, ये काम आसान नहीं था। माधवेंद्रपुरी को वहां से चंदन लाना, इसमें कई बाधाएं थी और कई अवधे, ये काम आसान नहीं था। वसुदेव जी को, कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाना मध्य रात्रि में, इसमें भी कई बाधाएं और कई दुविधाएं थी, ये काम भी आसान नहीं था। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को और अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ति करने के लिए विदेशों में जाना, इसमें भी कई असुविधाएं और कई बाधाएं थी, ये भी काम आसान नहीं था। लेकिन जैसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततच्च सौरी भगवत प्रचोदिता, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वसुदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि तो भगवान आप चले जाओ ना, मुझको इस संकट में क्यों डाल रहे हैं। वसुदेव जी को पता था कि ये भगवान है, देख चुके हैं चतुर्भुज रूप, तो वसुदेव जी नहीं कह सकते थे कि आप चले जाओ, हमको इतना बड़ा संकट में क्यों डाल रहे हैं। भक्त तो राह देखता है कि भगवान की सेवा का अवसर, हम लोग कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं अरे नहीं मेरे को जरूरी काम है, ये उसको सौंप दो ना प्रभु जी, क्या आप मेरे पीछे पड़े हो, ये सेवा उनको दे दो है? मैं थोड़ा काम है जा रहा हूं, ठीक है प्रभु जी है, हम तो चाहते हैं कि कैसे मुकरा जाए, और दुविधा नहीं है तो भी दुविधा और विघ्न पैदा करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, आज प्रभु जी बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए वसुदेव जी ने भगवान से ये नहीं कि आप चले जाओ, वसुदेव जी तैयार हुए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वहां क्या लिखते हैं, ततच्च सौरी, ये शब्द 10 बार बोला लेकिन इसलिए बोला कि इसमें शब्द देखिए, ततच्च सौरी, सौरी कहा किसके लिए, वसुदेव जी के लिए, क्यों, वे भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए इतने विघ्न और दुविधा होने के बाद भी तैयार हो गए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शौरी तपत शौरी। शौरी का अर्थ है सुरवीर। भक्त जो होता है वो सबसे बड़ा वीर होता है। कौन वीर है? जो भगवान की भक्ति में लगा है वास्तव में इस संसार में, वो ही वीर है। हमारी मीराबाई भी गाती है, सबसे बड़ा वीर कौन है? भक्ति करना कायरों का काम नहीं, ये वीरों का काम है। तो वहां पर वसुदेव जी को बताते हैं शौरी, सूरवीर थे वो, वीर थे। और कई हमारे आचार्य टीका करते हैं कि वसुदेव जी बहुत आशावादी थे। आशावादी होना बहुत जरूरी है, भक्त को हमेशा आशावादी होना चाहिए। वसुदेव जी इतने आशावादी थे कि कंस देवकी को मारने के लिए बिल्कुल तलवार निकाल लिया, अब काटने वाला है मस्तक, इतना थे। फिर भी वसुदेव जी इतने आशावादी हैं कि कंस को समझाने लगे, वहां उपदेश करने लगे। उसमें क्या उपदेश कोई कर, कैसे उपदेश काम आएगा? वो इतना उदंड हो चुका है, तलवार निकाल चुका है, देवकी के केस पकड़ चुका है, और वहां वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। भक्त जो होता है आशावादी होता है, भगवान की सेवा में रहता है इसलिए उसको आशा होती है कि भगवान जहां, भगवान जिसके पक्ष में है वास्तव में वो सफल होता है। प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में वहां पर वो गीता का श्लोक कोट करते हैं, योगेश्वर कृष्ण क्या थी? योगेश्वर कृष्ण तथा पार्थ धनुर्धर, क्या है श्लोक कैसे? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव मतिर मना। वही सफलता है, वही ऐश्वर्य है, वही धर्म है, वही सभी प्रकार की सफलता है। तो भक्त आशावादी होता है क्योंकि भगवान को वो साथ, भगवान पर उसकी पूरी पूरी श्रद्धा होती है। तो वसुदेव जी जैसे आशावादी थे, शौरी थे, वीर कहा गया, ऐसे ही माधवेंद्रपुरी भी बहुत आशावादी थे। उनके पास कोई सुविधा नहीं है लेकिन वो तैयार हो गए। और इसी प्रकार प्रभुपाद भी, कोई सुविधा नहीं है, बहुत दुविधाजनक कार्य है, कई बाधाएं हैं, लेकिन प्रभु तैयार हो गए। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी तैयार हो गए, कोई विचार नहीं किया। भौतिक परिस्थितियों की ही भक्त परवाह नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए। और इस प्रकार माधवेंद्रपुरी उन दोनों जिनको दीक्षित किया था उनको सेवा सौंप कर माधवेंद्रपुरी वहां से प्रस्थान किए और जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। जब रवाना हुए तो बीच में वही रेमुणा मंदिर आया। तो रेमुणा में आए तो वो गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए रेमुणा में रुके और रुक कर पता लगाया कि यहाँ पर भगवान को क्या भोग लगता है, बहुत सुंदर भोग लगता है, हैं? और ये भोग जो लगता है उसके बारे में पूछा तो बताया माधवेंद्रपुरी को कि संध्याए भोग लागे खीर अमृत के लिए ना। यहाँ पर संध्या काल में जो भगवान गोपीनाथ जी को भोग लगता है वो खीर भोग लगता है और वो खीर जो है वो अमृत के लिए, अमृत के समान भोग है। और द्वादश मत प्रात्रे भरी अमृत समान, वो भोग 12 मिट्टी के पात्रों में भरकर वो भोग लगाया जाता है और वो जो खीर है वो अमृत के समान है। जब इस प्रकार का उन्हें सुना तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि अगर वो खीर मुझे चखने को मिले तो इस प्रकार की खीर मैं जाकर मेरे गोपाल जी को बनाकर भोग लगाऊंगा, ऐसी उनके अंदर इच्छा हुई। और उसी समय पुजारी संध्या काल में वह भोग का पात्र ले जा रहा था, लेकिन इस प्रकार की जब इच्छा हुई तो माधवेंद्रपुरी को खेद हुआ कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया गया और मैंने पहले से ही इच्छा व्यक्त कर दिया, ओह मैं बहुत बड़ा पापी, इसका सोचने लगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखा तात्पर्य में कि वहाँ जब हम भगवान को भोग लगाने के लिए कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसको ढक कर ले जाना चाहिए और फिर विग्रह के सामने लाकर उसको खुला करना चाहिए, खुला नहीं ले जाना चाहिए। और भगवान को जो भोग लगाना है तो उसके पहले हमको खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी हालांकि वो कोई अपने लिए ऐसा विचार नहीं करता, फिर भी भक्त दैन्य भाव इस प्रकार का विचार करता है तो माधवेंद्रपुरी विचार करने लगे और जब भोग लगा वहाँ, और भोग लगने के बाद भोग ले लिया गया, संध्या आरती भी हो गया और शयन भी भगवान का हो गया। लेकिन माधवेंद्रपुरी उठकर बाजार में चले गए और एक स्थान में बैठकर भगवान का जप करने लगे। अब भगवान का शयन हो गया, रात्रि हो गया, पुजारी भी सो गया। अब जब पुजारी सो गया तो पुजारी को स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और आकर कहा, उठे पुजारी कर द्वार विमोचन, विमोचन मतलब खोल, उठे पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखिया से सन्यासी कारण। गोपीनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उठे पुजारी, उठो भाई, ओ पुजारी जी उठो, अरे क्या काम है, अभी रात्रि हो गई है बहुत, द्वार खोलो हमारे, हाँ हमारे पद्मासन का द्वार खोलो, कर द्वार विमोचन, क्यों क्या काम है, द्वार विमोचन, आरती का समय तो हुआ नहीं है, अभी तो मंगला को बहुत टाइम है। तो कहते, खीर एक राखिया छे, मैंने तुमने जो भोग लगाया था उसमें से एक खीर का पात्र मैं रख लिया हूं और पर्दे के पीछे रखा हूं। क्यों रखे, सन्यासी कारण, एक माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी यहां आए हैं, उनके लिए उस खीर को जुड़ाया हूं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का वहां तात्पर्य है, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, पढ़ने जैसा। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि भगवान ने चोरी किया और दूसरे को बता रहे हैं। क्या कोई इस संसार में चोरी करता है तो दूसरे को बताता है कि आपका मोबाइल मैं चुराया हूं, और बताता है तो वो घृणित बात माना जाता है, फेंक देगा, इधर उधर कर देगा, लेकिन बताएगा नहीं कि आपका मैं ये चोरी किया हूं। लेकिन भगवान पुजारी को बता रहे हैं कि हे पुजारी, उसके लिए मैं चोरी किया हूं, उस सन्यासी के लिए मैं चोरी किया हूं। तो भगवान बताते हैं, जब भगवान ने यह बात बताया तो पुजारी को अद्भुत आनंद हुआ। अरे कोई चोरी चोरी की बात बताता है तो व्यक्ति सामने का घृणा करता है और रंजित हो जाता है, चोर ऐसा कर। लेकिन भगवान ने जब चोर, तो ये भगवान का जो चोरी है, जो कार्य इस संसार में घृणित निंदित माना जाता है, वही कार्य आध्यात्मिक जगत में प्रशंसनीय है। वो प्रशंसा करने लगा पुजारी, अरे बाप रे भगवान, उसके लिए खीर चुराए, वहां भगवान कितने महान है। क्या ऐसा कोई कहता है, ये चोर कितना महान है, इतना चोरी करता है, ऐसा कोई? तो भगवान का जो हर कार्य है वो दिव्य है। इसलिए भगवान जो इस संसार में कार्य निंदनीय है, लेकिन अगर वही कार्य भगवान करते हैं तो वो प्रशंसनीय है। इसलिए भगवान के किसी कार्य की ही निंदा नहीं करना चाहिए। विशेषकर प्रभुपाद जी का इशारा है रासलीला की तरफ, कुछ लोग जो रासलीला का निंदा करते हैं, तो लेकिन जो कार्य इस संसार में निंदनीय है वो कार्य भगवान के लिए प्रशंसनीय है, या जो कार्य इस संसार में निम्न स्तर का है आध्यात्मिक वो टॉप है, टॉप स्तर का माना जाता है। जैसे परकिया भाव, भक्ति के भाव में सबसे सर्वोपरि भाव है परकिया भाव। जो भाव भक्ति के जो नौ स्तर हैं, नौ अंग हैं और नौ स्तर हैं, आदु श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर आसक्ति और फिर भाव और फिर प्रेम, ये नौ स्तर है। तो भाव जो होता है, तो भाव में भी दो स्तर हैं, एक स्वकिया एक परकिया। तो परकिया है वो टॉप है, लेकिन ये जो परकिया भाव है ये इस संसार में बिल्कुल निम्न माना जाता है। परकिया मतलब पराई स्त्री के साथ प्रेम करना, इस संसार में वो थर्ड क्लास माना जाता है, लेकिन वही भाव आध्यात्मिक जगत में टॉप माना गया है। तो इस प्रकार भगवान के जो लीलाएं हैं या भगवान के जो कार्यकला वो दिव्य स्तर में है, उसको भौतिक स्तर में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार वो भगवान ने चोरी किया और बताया, बताया तो वो तो पुजारी भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, आनंदित हो गया, अरे चलो चलो, उठा, स्नान किया, जाकर पट खोला, अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा, पता तो देखा कि खीर का पात्र है, तुरंत उस खीर के पात्र को लिया और मंदिर से बाहर दौड़ा। अरे माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी कौन है, माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी महाभाग्यवान कौन है? तो माधवेंद्रपुरी ने कहा, मैं हूं भाई, क्या बात है इतना रात्रि में, क्या? तो बोला, लीजिए, प्रणाम किया, वो ब्राह्मण दंडवत किया। रूपा जी ने लिखा कि ब्राह्मण वास्तव में और किसी को, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सर्वोपता है, चार वर्ण में सबसे ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं करता, लेकिन माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया। क्यों? उन्होंने देखा कि ये तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया और जिनके कारण भगवान का सपना में मुझसे भी भेंट हुआ, वार्तालाप हुआ, ये इसके कारण ये हैं, ये महान भक्त हैं। प्रणाम किया और फिर वो खीर अर्पण किया, आप बहुत महान भाग्यवान हो, भगवान ने ये खीर दिया है। और उस खीर को माधवेंद्रपुरी ने खाया और उस कुल्लड़ जो था मिट्टी का पात्र उसको तोड़ा और तोड़कर अपने पल्लू में, बहुत ही जैसे हम लोग कोई हीरा का पड़ीका है, बड़े डायमंड है, दो दो चार चार कैरेट के, 100 कैरेट के डायमंड है, और उसको कैसा रखते हैं, हैं? उसके अंदर और बार बार संभालते हैं, ऐसे माधवेंद्रपुरी ने उस पुड़िया को रख दिया बांधकर, मिट्टी के टुकड़ों को बांधकर रखा, और वे प्रतिदिन उसमें से एक एक टुकड़ा खाते। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने वो खाया, पुजारी ने प्रणाम किया और फिर पुजारी चले गए। माधवेंद्रपुरी ने विचार किया कि प्रातः होगा, इस बात का चर्चा होगा, लोग हमको आकर प्रणाम करेंगे, मेरी वाहवाह होगी, भक्त के लिए ये वाहवाही बहुत ही बड़ी बाधा है भक्ति में। इसलिए भक्त को कभी वाहवाही का आशा या सम्मान का, हमको मान मिले हैं, ऐसा आशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए कभी हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते, उसी में फंस कर रह जाते हैं। पद प्रतिष्ठा धन अर्चन ये सब भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि पद प्रतिष्ठा मान ये अनर्थ है, और भक्ति में आने के पूर्व जो हमारे अनर्थ होते हैं उनको नष्ट करना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में आने के बाद ये जो अनर्थ आ जाते हैं तो इनको दूर भगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्तों को इन अनर्थों से सावधान रहना चाहिए। जैसे भक्ति के आने के पहले हमारे में कई अनर्थ थे, हम नशा करते थे, पिक्चर देखते थे और होटलों में जाते थे, कई प्रकार का दुष्कर्म करते थे, लेकिन वो छूट गया, वो छूट गया, वो आसान है छूटना। लेकिन भक्ति के मैं आने के बाद, हाँ मैं तो बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मेरा तो ऐसा प्रवचन, मैं बड़ा भक्त हूँ, ये है वो है, इस प्रकार पद प्रश्न मान का जो भावना हमारे अंदर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है, और ये इसको फिर त्याग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माधवेंद्रपुरी ये विचार करते हुए वहां से रात्रि में ही निकल पड़े, हमको सम्मान चाहिए, ये महान भक्तों का आचरण है, और इस प्रकार चल पड़े। तो चलने के बाद, ये समय नहीं है, लेकिन इस पर कई भक्तों का आचरण, अभी हम कथा सुन रहे थे चित्रकेतु का, और भी कई भक्तों का देखे जाते हैं, तो वो दैन्य भाव होता है उनका, वे अपने प्रभाव को संसार में दिखाना नहीं चाहते हैं, वे अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। भक्त मतलब वैष्णव, जो अपने प्रभाव को नहीं दिखाना चाहता है, माधवेंद्रपुरी अपने प्रभाव को नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कितने बड़े भक्त हैं और भगवान ने भी उनके लिए खीर चुराई, ये प्रभाव नहीं दिखाना। जैसे चित्रकेतु को जब पार्वती ने श्राप दिया तो चित्रकेतु विमान से नीचे उतरे, पार्वती को प्रणाम किया और प्रणाम करके मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार किया और कहा, इसका दोष उनको नहीं दिया बल्कि कहा, सब कुछ देवादि ने, भगवान की इच्छा पर निर्भर है, वो कौन, भगवान किसको कहाँ रखनाते हैं वो जानते हैं, सब कुछ उनकी कृपा है। ऐसा नहीं क्या कहे तुमने मुझे श्राप दिया इसलिए मैं असुर बनूंगा, नहीं, सब भगवत कृपा के हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस प्रकार और इस प्रकार मुस्कुराते हुए चित्रकेतु वहां से चले। वहां तात्पर्य लिखा गया है कि शिव जी कहते हैं पार्वती को, अगर ये चित्रकेतु चाहते तो पलट कर तुमको भी श्राप दे सकते, इतना सामर्थ्य है उनमें, इन्होंने 7 दिन के भीतर भगवान का दर्शन किया है, ये इतने बड़े भक्त हैं और इनमें सामर्थ्य है कि पलट कर तुमको श्राप दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिए। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है अपना स्वभाव प्रकट करता है, अपना प्रभाव नहीं दिखाता कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं। तो माधवेंद्रपुरी भी अपने स्वभाव को प्रकट किए कि नहीं, हमको सम्मान नहीं चाहिए, हम अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहते, और वहां से निकल गए और जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के सामने बहुत सुंदर नृत्य किया, भावावेश आकर वे गिर पड़े और इस प्रकार अश्रुपात होने लगा और उनके शरीर में विकार हुए। सब भक्तों ने जब उनको देखा और उनको ये समाचार भी पहुंच गया, समाचार मिला कि ये वे ही भक्त हैं जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया था। तो सब भक्तों ने उनको सम्मान दिया और उनके भक्तों के साथ चर्चा हुआ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। गोपाल जी ने उनको दर्शन दिया और वो चाहते हैं चंदन का लेप, इसलिए मैं यहाँ चंदन और कपूर लेने आया हूँ। तो सभी भक्तों ने मिलकर उनका सहायता किया और इस राजा तक इस बात को पहुँचाया, और सरकारी अफसरों ने और भक्तों ने मिलकर माधवेंद्रपुरी के लिए चंदन लाया और चंदन और कपूर लाकर दिया, और इसके साथ साथ उनके साथ एक ब्राह्मण और एक नौकर भी दिया। सभी अफसरों से कुछ पत्र भी लिख कर दिए ताकि उनको बीच में रोका ना जाए, या टोल टैक्स के लिए या मलेस सरकार को इनको आपत्ति खड़ी ना करे, इसके लिए भी सारी सुविधाएं पत्र दिए गए, और इस प्रकार सब सुविधा माधवेंद्रपुरी को प्रदान किया गया, उनको कोई कष्ट उठाना नहीं। तो इस प्रकार भगवान की सेवा जो प्रेम अवश्य करना चाहते हैं तो उनको हर प्रकार की सुविधा मिलती है। ये सब देखिए, प्रभुपाद जी ने कष्ट भगवान के लिए उठाया तो भगवान ने उनको हर सुविधा प्रदान किया। वसुदेव जी ने भगवान की सेवा के लिए कष्ट उठाया, वसुदेव जी ने हर सुविधा उनको प्रदान किया। माधवेंद्रपुरी ने जब कष्ट उठाया तो माधवेंद्रपुरी को भी हर सुविधा प्रदान किया, इसलिए हमको तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार वहां सब सुविधा मिला और चंदन लाके दिया गया, कपूर भी दिया, और माधवेंद्रपुरी वहां से रवाना हुए। एक नौकर और एक ब्राह्मण उनके साथ थे, उन्होंने उनका सेवा किया और उन्होंने चंदन का गठरी उठाया, और फिर आते समय रेमुणा में आकर वो फिर रुके। जब रेमुणा में आकर फिर रुके और संध्या रात्रि निवास किया, तो उसी रात्रि संध्या में फिर से गोपीनाथ जी उनको सपन में आए, और गोपीनाथ जी ने सपन में आकर कहा कि हे माधवेंद्र, तुम जो ये चंदन लाए हो ये तुम यहाँ पर मुझको लेप कर दो, अगर मुझे लेप करोगे तो वहाँ मेरे और गोपाल में कोई भेद नहीं है, वहाँ मुझे इसका ठंडक मिल जाएगा, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप यहाँ गोपीनाथ जी में इसका लेप करो। वहाँ पर कृष्णदास कविराज और प्रभुपाद जी भी लिखते कि भगवान ने देखा कि हमारे भक्त को कोई कष्ट ना हो, ये अगर यहाँ से वृंदावन तक की यात्रा करेगा तो बीच में कई अवरोध आएंगे, भक्त इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन भगवान भक्त की परवाह करते हैं कि हमारे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारी सेवा प्रेम पूर्वक करना चाहते हैं उन भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने सोचते हुए कहा कि तुम इसका लेप यही कर। भगवान बहुत दयालु हुए। वहां कृष्णदास कविराज ने कई, या चैतन्य महाप्रभु इस कथा को बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि ये हमारी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान हर प्रकार से अपने भक्त को सहयोग देते हैं। जब हम तैयार होते हैं सेवा के लिए तो भगवान पूरा पूरा सहयोग, जब हम ही सेवा करने के लिए तैयार नहीं, हमारा इच्छा ही नहीं हो रहा है तो भगवान क्या सहयोग करेंगे तो इस प्रकार भगवान ने सहयोग किया। और प्रातः उठकर पुजारी को ये बात जब बताया, वहां बहुत प्रसन्न हुए सभी पुजारी और भक्त, और उन्होंने कहा कि हम आज से ही अर्थात अक्षय तृतीया के दिन से ही ये चंदन यात्रा उत्सव चालू हुआ। वहाँ रोज चंदन को घिसा जाता था और गोपीनाथ जी को पूरा लेप किया जाता था। अब इस कथा का सार बताते हुए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने भक्तों को कि इस प्रकार की लीला गोपाल जी ने क्यों किया, क्यों गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को ऐसा आदेश दिया जो सेवा बहुत कठिन है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ए भाव गाढ़ प्रेमा लोका दिखाई दे, गोपाल तारे आज्ञा दिल चंद न आनी दे, ए भाव कि माधवेंद्रपुरी हमसे कितना गाढ़ प्रेम करते हैं, इस माधवेंद्रपुरी के गाढ़ प्रेम को इस लोक में दिखाने के लिए, लोक में प्रकट करने के लिए गोपाल जी ने चंदन लाने के लिए आज्ञा दिया कि देखो हमारे भक्तों का, इस माधवेंद्रपुरी का हमारे प्रति प्रेम, गाढ़ प्रेम, माधवेंद्रपुरी का कितना गाढ़ प्रेम गोपाल जी के प्रति था, ये इस लोक में दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला किया। और बहु परिश्रम चंदन रेमुणा अनिल, तब माधवेंद्रपुरी ने बहुत परिश्रम करके भगवान की इस आज्ञा का पालन करते हुए बहुत परिश्रम करके इतना लंबा यात्रा किया, चले, बहुत कष्ट हुआ होगा, रास्ते में खाने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला तो किसी से मांगा भी नहीं, और इस प्रकार अयाचक व्रती था और इतना लंबा यात्रा किया, कितना परिश्रम हुआ होगा। बहु परिश्रम चंद्र रेमुणा नीला, जब बहुत परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी ने ये चमन रेमुणा में चंदन लेकर आए तो आनारा बाडील मन दुख न आने, दुख न गनीला। और वो जब वहां आ गए तो माधवेंद्रपुरी के मन में जो जो उनको कष्ट हुए, जो उनको दुख पड़ा, वो उनके मन में बिल्कुल नहीं था, उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं था। बाकी आनंद बढ़ी ला, लेकिन उनका आनंद और बढ़ा। ये भक्ति का रहस्य जानिए। भक्त लोग जब भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में कई कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन भक्ति में जो आनंद है, भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने ये दुख बिल्कुल तुच्छ है, तुच्छ हो जाते। आनंद बढ़िला मन दुख ना गनीला, दुख ना गनीला, उन दुख उनको इतना आनंद मिला कि वो दुख तो बिल्कुल तुच्छ हो गए। वसुदेव और देव की कारागृह में हैं, उनके छह छह पुत्र मारे गए हैं, लेकिन जब भगवान उनके हृदय में प्रकट आए तो देवकी का तेज बढ़ गया, उनका आनंद बढ़ गया। कैसे हो सकता है जिनके छह छह पुत्र मारे गए हैं, जो कारागृह में बंद है, उनका आनंद कैसे, उनका तेज कैसे बढ़ सकता है? लेकिन जो भौतिक कष्ट है, ये भगवत सेवा में इतना आनंद है, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि उसके सामने भौतिक कष्ट भक्त को प्रभावित नहीं करते। ये जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए उनके चरित्र में ये देखा जाता है। तो आनंद बढ़ीला, भगवान की जब ये सेवा उनको करने का अवसर मिला तो माधवेंद्रपुरी का आनंद बढ़ा और दुख ना गनीला, उन्होंने दुख को कोई स्थान नहीं, दुख को मन तक नहीं आया, कोई कष्ट हुआ नहीं, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार परीक्षा करी थे गोपाल, इस प्रकार गोपाल ने माधवेंद्रपुरी का परीक्षा किया। परीक्षा करी थे गोपाल केला आज्ञा दान दिया, हाँ उनको आज्ञा दिया था उनकी परीक्षा करने के लिए, लेकिन जब परीक्षा करिया शेषे हेले दयावान, लेकिन जब परीक्षा में माधवेंद्रपुरी सफल हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो शेषे हेले दयावान, फिर गोपाल जी उनके प्रति बहुत दयालु हो गए, बहुत कृपालु हो गए, और कृपा करके उन्होंने कहा कि अब वहां नहीं जाना, अब यहीं पर ये लेप लगा। वो भी हाँ उनके इस परीक्षा का उत्तीर्णता देखकर, उनका उत्साह देखकर कि दुख को ये गिन नहीं रहा है और मेरी सेवा के लिए और आनंद उसका बढ़ गया है, तो भगवान बहुत कृपा किया, बहुत दयालु हो गए उनके प्रति, और उनको कहा कि ये चंदन का लेप यहीं करो, अब ये भार उठाकर आपको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, कृपा किया है। और इस अब मैं बहुत संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु जो ये माधवेंद्रपुरी के जीवन का सार बता रहे हैं वो जानने योग्य है। इस प्रकार का माधवेंद्रपुरी का प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया, माधवेंद्रपुरी का प्रेम भक्ति को प्रकट करते हुए दिखाते हैं, एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, और उस श्लोक के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये माधवेंद्रपुरी ये श्लोक प्राय उच्चारण किया करते थे, और इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जीवन की संसिद्धि प्राप्त की, जीवन का सिद्धि प्राप्त किया। और ये श्लोक कैसा है तो उसके विषय में कहते हैं, जैसे चंदन के घिसने पर उसकी खुशबू, उसकी सुगंध प्रकाशित होती है, और जैसे मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वोपरि है, मूल्यवान है, ऐसे रस काव्य में जितने भी रसमय श्लोक हैं, भगवत रसमय, भक्ति रसमय जितने भी काव्य हैं, जितने भी श्लोक हैं, उसमें ये जो श्लोक है ये उसी प्रकार दिव्य है जिस प्रकार चंदन में सुगंध और जिस प्रकार मणियों में कौस्तुभ मणि। मणियों में कौस्तुभ मणि दिव्य है और चंदन में जो चंदन का सुगंध है वो दिव्य होता है, इसी प्रकार काव्य रस में, भक्ति रस में ये जो श्लोक है जो माधवेंद्रपुरी उच्चारित करते थे, ये सभी काव्य रसों में शिरोमणि श्लोक है। और उस श्लोक का उच्चारण करते हुए माधवेंद्रपुरी शेष काले ये श्लोक पढ़ीते पढ़ीते सिद्धि प्राप्त हेलपुरी श्लोक सही, अंत समय में इस शरीर का त्याग करते करते उन्होंने त्याग करने तक इस श्लोक का उच्चारण किया और जीवन की सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। और वो श्लोक है, बताइए तो बता रहे हैं,
ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे हृदयं त्वद अवलोक्य कातरं दैतं भ्राम्यति किं करोम्यहम्।
वहां कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि इस श्लोक को, इस श्लोक के रहस्य को मात्र तीन ही व्यक्ति जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेंद्र जी। ये तीन ही व्यक्ति इस श्लोक के रहस्य को जानते हैं। ये इतना दिव्य श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐ दीन दयाद्रनाथ, ये भगवान के विरह में होने वाले ताप या विरह में, भगवान के विरह में होने वाले, भगवान का प्रति जो उनके विरह में जो उनकी दशा है उसको प्रदर्शित करता है। भगवान के विरह में, भगवान के विरह में भक्त अपने आप को कहता है, ए दीन दयाद्रनाथ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दीन हूँ, आप धनी हैं, आप दीनों के नाथ हैं। हे दीन दयाद्रनाथ, मैं दीन हूँ, मैं तो बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप दीनों के नाथ हैं, दयाद्रों के नाथ हैं। हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरा नाथ, कौन, हे मथुरापति, कदा अवलोकस्य, अब आपकी हमसे कब भेंट होगी, अब आपका दर्शन कब होगा, मैं कब अब आपका दर्शन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आपके दर्शन के बिना हृदय त्वद अवलोक कातरम, अवलोकन, आपके दर्शन के बिना मेरा हृदय कातर कातर हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। हृदय त्वद अवलोक कातरम दैतम, हे भक्तों के प्रेमी, दैतम भ्राम्यति, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं विह्वल हो रहा हूं कि अब मैं क्या करूं, मतलब अब मैं क्या करूं कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, मैं अब विह्वल हो रहा हूं, किम करोति अहम्, अब मैं क्या करूं आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्या करूं। ये श्लोक जब भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए तो राधा रानी के द्वारा उच्चारित ये श्लोक है कि अब आपका दर्शन कब होगा, हे मथुरा नाथ, अब आपका दर्शन कब होगा, आपके दर्शन के बिना हमारे हृदय व्यथित हो रहे हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें आपके बिना। इसी श्लोक का उच्चारण माधवेंद्रपुरी अपने जी के अंतिम आस तक करते रहे और इस श्लोक का उच्चारण करते करते माधवेंद्रपुरी ने जीवन की सिद्धि को प्राप्त किया, जो जीवन का सिद्धि है हरितोषणम या हरि कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना, तो उस प्रेम को प्राप्त किया। माधवेंद्रपुरी के बारे में हमारे आचार्यों के कई मत हैं, या जो माधुर्य भाव है, विशेषकर विरह भाव और माधुर्य भाव, उसके ये आचार्य माने जाते हैं। ये लक्ष्मीपति के शिष्य थे, लेकिन माधवाचार्य और लक्ष्मीपति तक ये माधुर्य भाव जो किसी भक्तों में प्रकट नहीं था, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने आकर ये माधुर्य भाव का प्राकट्य किया और उसी वही माधुर्य भाव माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु में आया है उस परंपरा से, और उसी भाव को, उसी उन्नत उज्ज्वल रस को चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ वितरित किया। तो जो चैतन्य महाप्रभु के लिए का महावदान्याय, जो महादान दिया चैतन्य महाप्रभु में माधुर्य भाव उज्ज्वल रस का, वह उन्नत उज्ज्वलो रसम, ये इसके प्रदाता वास्तव में माधवेंद्रपुरी है। और इसी परंपरा से ईश्वरपुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु से होते हुए इस जीव जगत को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ये चंदन यात्रा जो महोत्सव है,
वास्तव में ये माधवेंद्रपुरी का प्रेम भक्ति का ही एक उत्सव है जो कल से प्रारंभ होगा। कल से 21 दिन तक प्रतिदिन भगवान को चंदन का लेप किया जाएगा और इसका दर्शन प्राप्त होगा। तो सभी भक्त इस लीला का पूरे 21 दिन तक स्मरण करें और इस प्रकार अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। चंदन यात्रा महामहोत्सव की, माधवेंद्रपुरी पाद की, चैतन्य महाप्रभु की, सब वेद भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।